أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی دفعہ ہم سورہ یونس کی 10 آیات کر چکے تھے اور یہ 11واں پارہ چل رہا ہے. انشاءاللہ آج ایک دو رکوع سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لخزی الیہم اجلهم. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملے میں برائی لانے کے لیے ان پر اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی اچھائی حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں, حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں, تو ان کا وقت ختم کر دیا جاتا. یعنی اجل موت کا وقت جو ہے ختم کر دیا, موت آ جاتی, سزا اور جزا کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا. تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ انسان بھلائی کی بہت جلدی کرتا ہے, صبر نہیں کرتا, جلدی ہونا مجھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم بھلائی کی جیسی جلدی کرتے ہو, اگر تمہاری برائی پہ ہم سزا دینے میں ویسی جلدی کریں تو پھر انسان کوئی باقی نہ رہے, سب کی موت آ جائے, سب کا جو ہے خاتمہ ہو جائے, اور پھر مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہو جائے اور پھر حساب کتاب ہو جائے. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون. تو ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, ان کی سرکشی میں, ان کے ریبیلین میں, ریولٹ میں اندھا دھن بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے ان کو, آخرت پہ ایمان نہیں. ایمان کا ایک رکن آخرت پہ ایمان ہے, آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں اندھا دھن بھٹکتے ہوئے. کوئی ان کا گولی نہیں ہے, نہیں معلوم کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں, کیا لینا چاہ رہے ہیں, ان کا کوئی گولی نہیں ہے. کم از کم مومن کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ وہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو جو امید ہی نہیں رکھتے اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی, ان کو اللہ تعالیٰ اندھا دھن بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں جیسا سائنس کی بات آ رہی ہے, یہاں ایک ہیومن سائیکالوجی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نچوڑ کے رکھ دی ہے اس آیت میں. آگے بھی بات آ رہی ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہم کو پکارتا ہے. اور یعنی دعانا ہم کو پکارتا ہے. تکلیف جب پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کوئی بڑا اچھا بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان, ایک آیت آگے آ رہی ہے, ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو انسان تکلیف میں یاد کرتا ہے اور اچھائی میں بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانیں گے, یعنی وہ شخصیت ہے, وہ ذات ہے جس کو تکلیف میں پہچانتے آپ. بیٹھے اٹھے لیٹے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے, بیمار ہیں, نقصان ہو گیا بزنس میں, پروموشن نہیں ہو رہا ہے, بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں, یہ تمام ہے تو اٹھے بیٹھے لیٹے جو ہے پکارتے رہتے ہیں. اور پھر کہا کہ فلما کشفنا عنہ ضرہ مرا کان لم یدعونا الی ضر مسہ. اور جب ہم اس کے تکلیف کو, اس کے نقصان کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ انسان ایسا گزر جاتا ہے جیسا اس تکلیف پہ جو اس کو پہنچی تھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. میں ایک بڑا زبردست سین دیکھا تھا, میں تو میں اکثر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, بہت سے لوگوں کو ممکن ہے یاد بھی ہوگا کہ ایک ہاسپٹل میں تھا میں, کوئی قریبی رشتے دار بیمار تھے, تو معلوم ہوا کہ وہ بازو کے وارڈ میں کچھ ڈیلیوری کا کیس تھا, بہت خطرناک ہو گیا ہے, تو وہاں ایک جانماز بچھا دی گئی اور تمام رشتے دار آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک, نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ہو رہا یہ ہو رہا. خیر پھر 2-3 بجے کے قریب معلوم ہوا کہ نہیں, ڈیلیوری ہو گئی اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. جانماز بچھی بھی ہے, مجھے ابھی رونگٹے کھڑے آ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں کہ عصر کا وقت آیا, مغرب کا وقت آیا, عشاء کا وقت آیا, جانماز بچھی بھی ہے, کوئی آ کے پھر نماز نہیں پڑھا, ہو گیا, غرض نکل گئی ہے, جس چیز کے لیے پڑھ رہے تھے وہ ہو گیا. تو یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ انسان جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو پھر تکلیف دے کے یاد کیوں کروانے لگاتے ہو, راحت میں کیوں نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھیں یہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ جب ہم تم کو شکر کی کیفیت دیتے ہیں تو تم صبر کی کیفیت میں رہتے ہو. اجاڑ ایک ہی موٹر ہے, اجاڑ ایک ہی فلیٹ ہے, اجاڑ ایک ہی یہ ہے, تمہاری یہ کیفیت ہے. और जब हम तकलीफ देते वो भी निकालते झोपड़ी में डाल देते तुम्हारे को, तो जब पता चलता है कि क्या, अब जैसा जो स्टॉर्म आया है अमेरिका में, इतना एडवांस नेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया को लीड करने वाला, कुछ नहीं कर सक रहा है। क्या हालत है उन लोगों को, खाने का खाना नहीं है उस मुल्क में, ये हमारे पास के गांव खेड़े नहीं है ये। तो अल्लाह ताला कहीं भी ला सकता है तकलीफ, यहां भी ला सकता है। तो इंसान की साइकोलॉजी बता रहा है कि जब तकलीफ पहुंचाते हैं तो हमको याद करता है, और जब आराम देते हैं तो ऐसा गुजर जाता है जैसा हमको पुकारा ही नहीं था बिल्कुल बिल्कुल ही जो है। तो यहां इशारा ये हो रहा है, हुक्म ये आ रहा है कि ऐसा मत किया करो, तकलीफ में भी हमको पुकारो, राहत में भी हमको पुकारो। कजालिका जुय्यना लिल मुसरफीना मा कानू यामलून, मुसरफीन को इस तरीके से ये जो अमल करते हैं यानी नाशुक्री और बेरुखी का अमल करते हैं वो अच्छा दिखाया जाता है। अब क्या जरूरत पड़ी अल्लाह ताला को याद करने। अभी मुसरफीन कौन है, तो मैं से पहले भी बता चुका हूं कि मेरी एक आदत बन गई है कि जहां कुरान से बात को समझा सके वहां लुगत पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सूरह आराफ की 81 आयत है, उसमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मुसरिफून कहा गया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम मुसरिफून क्यों थी, कि वो शहवत अपनी बीवियों से पूरा करने के बजाय मर्दों से पूरा करते थे। गलत जगह पे अपनी सलाहियतें अपना वक्त लगाना, ये इसराफ हुआ, फजूल खर्ची भी उसमें आ जाती है। तो अल्लाह से हटके, यानी अब इन लोग क्या है, अल्लाह से हटके दूसरी जगह अपना अटेंशन लगा देते हैं। जैसे ही तकलीफ हट जाती है अल्लाह से हटके दूसरी जगह अपनी तकलीफ अपना अटेंशन लगा देते हैं। तब ये इसराफ नहीं करना चाहिए। देखिए हम पैसों में ही इसराफ समझते हैं, वक्त में भी इसराफ होता है। टेलीफोन पे बात हो रही, अगर गीबत छोड़ दें हम तो मैं समझता हूं बिल 500-600 आएंगे। वो गीबत की बिल 1,500-2,000 आती हो, वो गीबत अलग हो रही बिल अलग जा रही है। तो बातों में भी इसराफ, बातों में भी इसराफ मत करो, काम की बात करो। बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि बात करो तो अल्लाह रसूल की बात करो या खामोश रहो, बेहतर है कि खामोश रहो अगर दूसरी बेकार बात करना है। तो इसराफ करना, फिर अब इसराफ का एक लेवल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मिसाल से साबित होता है कि इसराफ क्या चीज है। एक दिन आपके दस्तरखान पे 2 सालन थे एक के बजाय, खलीफा वक्त हैं, 2 सालन थे, तो आपने बीवी से कहा कि ये क्या इसराफ है, यानी ये गैर जरूरी है, जब एक सालन पे पल सकते हैं तो फिर दूसरे सालन की क्या जरूरत है। और हमारे पास ये है कि क्या भाई मुफलिसी घेरी, कोई तलन नहीं, कुछ भी नहीं, शामी शिकमपुर कुछ भी नहीं, ऐसा क्या दाल भाजी पर चल रही बात। तो अब ये इसराफ को समझना है कि वो भी एक लेवल था जिसको इसराफ समझते थे, और हमारे पास तो जिंदगी में इसराफ ही इसराफ है। आप किसी भी शादी में आजकल शरीक हो जाइए, मैं माफी चाहता हूं सभी के रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं इसमें, किसी भी शादी में शरीक हो जाइए और इसराफ का टॉप लेवल देख लीजिए आपके, क्या इसराफ हो रहा है, क्या इसराफ हो रहा है। अगर ये तमाम शादियों में ये इसराफ अगर रोक दिया जाए, मैं समझता हूं हैदराबाद में कोई मुसलमान बच्ची अनबिया ही नहीं रहेगी, पूरों की शादियां हो जाएंगी, किसी को फिक्र ही नहीं, इतना पैसा फेंका जा रहा है। वलकद अहलकना अल-क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, और हमने तुम लोगों से पहले दूसरी बस्तियों को हलाक किया जब इन्होंने नाइंसाफी की। बगावत जो है, या अय्युहन नासु इन्नमा बगयुकुम अला अन्फुसिकुम, इन्नमा का मतलब यह है था ओनली, ये बगावत सिर्फ तुम्हारे अपने खिलाफ है। मताल हयात दुनिया, ये जो तुम इस किस्म की हरकतें कर रहे हो बगावत वगैरह की, ये जो है ये जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा, मता किसको बोलते हैं, थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट है, उसके बाद तो हमारे पास आना ही है, उस वक्त हम मजा चखाएंगे। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम हमारे पास आओगे, फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो फिर हम तुमको जो है बताएंगे जो कुछ तुम करते थे। ये कैसा बताएंगे, अभी बात आई कि फरिश्ते हैं लिख रहे हैं, अल्लाह ताला को इल्म है, मेमोरी पे रिकॉर्डेड है, पूरा मेमोरी पे रिकॉर्डेड है। क्या आप अपनी मेमोरी को डिनाई कर सकेंगे। ये देखिए कंप्यूटर पे आप क्या है भाई, कोई शादी का कैसेट रिकॉर्ड करे, इट्स ओनली द मेमोरी ऑफ द मैरिज दैट इज रिकॉर्डेड। ट्राई टू कैच माय पॉइंट, शादी का कैसेट आप रिकॉर्ड करें, वो शादी की याददाश्त है जो आप रिकॉर्ड करें। आपकी आंखों कानों जिस्म पूरे 5 सेंसेस के जरिए जो रिकॉर्ड हो रहा है, टेस्ट स्मेल साइट और हियरिंग टच, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेमोरी का कैसेट अगर अल्लाह ताला कयामत में अपने कंप्यूटर पर चला के बता दे तो आप क्या करेंगे। आप तो यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम में बता रहे हैं, वो कंप्यूटर निकाले चलाए कैसेट, बोले अरे ये देखो उन्होंने मर गए, उनका इंतकाल हो गया, इनका कितने थोड़े लोग रह गए भाई, बोले चलो पुराना कैसेट देख रहे हैं आप निकाल के। तो यहां तुम जब हमारे पास आओगे तो हम तुमको इत्तला देंगे कि तुम क्या क्या करते हो। तुम समझ रहे हैं कि हम गाफिल हैं इससे? हर चीज रिकॉर्ड, ऐसा बेहतरीन मैकेनिज्म है मेमोरी का, ऐसा बेहतरीन मैकेनिज्म है कि कोई अपनी मेमोरी से कोई चीज छुपा ही नहीं सकता, ना कोई बात, ना कोई प्लान, ना कोई ख्वाब, ना कोई अमल, कोई चीज मेमोरी से नहीं छुपती। मेमोरी याद आता, रहे उस दिन वो फकीर को झुड़की दे दिया था मैं, 10 साल पहले की बात, नहीं होना था ऐसा, नहीं करना, ऐसी गलती हो गई थी, पूरे मेमोरी पे रिकॉर्डेड है। कैसा आ रहा है बाद वक्त मेमोरी, तो कियामत में अल्लाह ताला पूरी मेमोरी निकाल के बता देंगे, देखो तुम्हारी एक एक मेमोरी है। अब अपने खिज्यून बदनामी उस दिन की, पूरे नवासे नवासियां, पोतरे पोतरे पोतरियां पूरे सब बैठे हुए, अरे नाना जान क्या हंगामा, पर्सनैलिटी से जवानी में बोले क्या क्या हंगामे करे, पूरी मेमोरी दिख रही। तो बोले या अल्लाह बचा ले उस दिन की बदनामी से, बचा ले। जो लोग इज्जत करते थे वो लोग बोल रहे किस किस्म की ये थे, बोले तो हम बता देंगे। अब यहां एक मिसाल दी जा रही है, तो मिसाल की मैं पहले आयत समझने के लिए बता दूं कि भाई जब आसमान से बारिश बरसती है तो वो बारिश का पानी जो है बींज में जाता, बींज झाड़ उगता, फिर पानी पड़ते रहा तो झाड़ बड़ा होता। तो जैसा पानी झाड़ बड़ा करता, इसी तरीके से हयात की वजह से जिस्म पलता है, बढ़ता है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आता है कि पूरा खेत तबाह हो जाता है। इसी तरीके से कभी भी हमारी मौत का हुक्म आ जाता है, हम मर जाते हैं। तो यहां अल्लाह ताला वो मिसाल को बता रहे हैं कि इन्नमा मसलुल हयातु दुनिया का माइन अंजलनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्ज मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम। यानी इस जिंदगी की, इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल सिर्फ ऐसी है कि जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया और वो जमीन के नबात यानी झाड़ों में मिल गया, और फिर ये झाड़ क्या हुआ कि इसको इंसान भी खाए और जानवर भी खा लिए। बहुत से तो ऐसे हुए जो फायदा पहुंचा तो फायदा पहुंचाए, यानी हम भी फायदा पहुंचा सकते हैं जैसा झाड़ फायदा पहुंचा रहे हैं हमको और जानवरों को। अगर ये नहीं मिलता तो हम खा नहीं। देखिए अगर अल्लाह ताला ये झाड़ नहीं उगाते तो हम वेजिटेरियन नहीं रह सकते थे। अगर ये जानवर ये नहीं खा के पलते तो फिर हमको गोश्त भी नहीं मिलता था। तो यहां यह बताया जा रहा है कि ये चीजें जो है तुम खाते हो, हत्ता इज़ा अख़ज़त अल-अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा फ़ज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरूना अलैहा आताहा अम्रुना लैलन व नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़ना बिल-अम्सी। यहां तक के जब जमीन अपना जेवर सिंगार लेके उठती है, कभी खेतों में जाके देखिए आप, इत्तेफाक से हिमालयन रेंजेस में मेरा मौका मिला था बहुत, कि जैसा सरसों के खेत होते हैं पीले फूल होते हैं, ऐसा मालूम होता है कि चादर है पीली बिछी हुई, खूबसूरती पे आ जाते हैं। यानी जैसा आदमी की जवानी होती है इस तरीके से जो है खूबसूरती पे आ जाती है, और फिर लोगों को अच्छा मालूम होती है, और उसके मालिक ये समझते हैं कि इनको इस पर पूरी कुदरत है, ये खेतों पर पूरी कुदरत है। फिर आता है अमरुना लैलम और नहारा, फिर हमारा हुक्म आता है रात में या दिन में, और उसको हम ऐसा कर देते हैं जैसा कटा हुआ खेत, जैसे कि कल वो खेत था ही नहीं। तो अब यहां एक बात समझना है कि हमारी मिसाल भी ऐसी है, पानी पड़ा बीन जुगा झाड़ पनपा, अल्लाह का हुक्म आया खत्म हो गया, हयात आई हम भी नुत्फे से बने जवान हुए, लोग समझे कि भाई ये तो इतना हट्टा कट्टा है ये मरने वाला नहीं है, लेकिन वो ऐन जवानी में भी कई लोग निकल गए। तो कभी भी मौत आ सकती है, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत, मुझे पूरी रिवायत याद नहीं है, कि मैं जब सीधी तरफ सलाम फेरता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि बाई तरफ सलाम फेरने तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तो मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी मौत आ सकती है। तो यहां मिसाल ले बोल रहे हैं, देखो तो मिसाल देखो, खेत किस तरीके से जो है पानी से उगता है, फलता है, बेहतरीन दिखने लगता है, हम समझते हैं कि पूरी कुदरत इस पे है, अल्लाह ताला का हुक्म आके उसको जो है बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इस तरीके से तुमको हमने जो है जिंदगी दी, तमाम खाना पीना दिया, जवान बनाया, वो करें, और कभी भी जो है हमारा हुक्म आ सकता है और तुमको तबाह कर दे सकता है। और फिर एक जगह आया सूरह फातिर में कज़ालिकल नुशूर, और जैसा ये पौधों को हम निकालते हैं इस तरीके से तुमको भी निकालेंगे, रेड़ की हड्डी से। कजाली का नुफस्सिलुल आयाति लिकौमी यतफक्करून, और इस तरीके से हम तफक्कुर करने वालों के लिए अपनी आयात को खोल खोल कर समझाते हैं, तफसील में खोल खोल कर समझाते हैं। तफक्कुर किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्ट करना, गौर व फिक्र करना। देखिए हमारे पास फिक्र उर्दू में फिर गलत हो गई, ऐसा है उन बेचारे फिक्रों में पड़े हुए हैं बोलते हैं, वरीज के माने में आ गया। नहीं, अरबी में फिक्र के माने रिफ्लेक्ट करना, गौर करना। तो जो लोग गौर करते हैं उनको हम जो है ये आयतें खोल खोल कर समझाते हैं। तो यहां दावत ये है, दावत फिक्र, कि अल्लाह ताला खुद दावत दे रहे हैं कि तुम फिक्र करो, गौर करो, मेरे कलाम पे गौर करो। ऐसा अंधों की तरह ऐसा पढ़ रहे हो कि समझ में नहीं आता। देखिए मैं एक हमेशा मिसाल रिपीट कर रहा हूं अक्सर जगह पे जहां भी बात होती है, कि एक मैं डिस्कवरी चैनल पे ये सुना था, डिस्कवरी चैनल पे, मुमकिन है मेरे पास डेट वगैरह रिकॉर्डेड हो, कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, 35,000 अमेरिकन आर एक्सेप्टिंग इस्लाम एवरी ईयर। हर साल 35,000 अमेरिकन जो है इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल उस पर है, वो तजवीद से कुरान पढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं या तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो भाई जवाब यही होगा कि वो अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने तजवीद पे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनकी तजवीद हमसे अच्छी है, तो हमसे अच्छी है उनकी तजवीद। जो लोग उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग आके बताते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे चुका हूं, एक मोहतरमा है, वो हेब्रू वगैरह में बाइबल और तौरेत पढ़ चुके हैं, न्यूजीलैंड में है, तो वो अरबी सीख रही हैं। काय के लिए? वो अरबी ओरिजिनल कुरान को पढ़ना चाह रही हैं। बोले ट्रांसलेटर का माइंड मुझे नहीं होना, मैं अपनी जबान में समझूंगी, अरबी को अपनी जबान बनाऊंगी और अपनी जबान में कुरान को समझने की कोशिश करूंगी। क्योंकि दूसरे ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं ट्रांसलेट, अल्लाह ताला करवाए हैं ट्रांसलेशन, बाद आयतों में 16 ट्रांसलेटर्स लिए तो 16 ट्रांसलेशंस हैं। यहां की लाइब्रेरी में भी आके खोल के देखते रहता था मैं, तो ट्रांसलेशंस में डिफरेंसेस है, हर एक ट्रांसलेटर एक नहीं है। तो यहां ये बात हम समझना है कि आप तफक्कुर कब कर सकेंगे कुरान पे, गौर और फिक्र कब कर सकेंगे, रिफ्लेक्ट कब खर्च कर सकेंगे कुरान पे, जब आप उस कलाम को अपनी जबान में समझें। इसका यह मतलब नहीं होता कि अरबी छोड़ दें आप, अरबी तो रहना है। हमारी हिमाकत यही हुई कि हम अरबी को छोड़ दिए। मुगल दरबार की रॉयल जो लैंग्वेज थी ऑफिशियल पर्शियन थी, नाउजुबिल्ला, अरबी होना चाहिए था। हमारे पास हैदराबाद में जो है अरबी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती थी, पर्शियन सिखाई जाती थी, पर्शियन और तेलुगु का ऑप्शन था। तो हम ये गलती कर चुके हैं। तो अब हमारा काम यह है कि पहले तर्जुमे पढ़े, उसके साथ अरबी पढ़े, और फिर गौर व फिक्र के लिए ऐसी जबान में पढ़ना कुरान जरूरी है जो आपको समझ में आए। एक वक्त कोई साहबा मिडल ईस्ट से एक सपोजिटरी लाए थे, भाई वो बच्चे के जिस्म में रखते जो है बुखार कम हो जाता, 104-105 भी रहा था। तो उसका अरबी में भी लिखा हुआ था, मिडल ईस्ट से आए थे, अरबी में भी लिखा हुआ था, इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, उर्दू में भी लिखा हुआ था। तो एक बच्चे को अरबी पढ़ना आता था, तो हमारे पास एक इज्तिमा चल रहा था, तो मैं बोला बेटा जरा खड़े रह के अरबी में पढ़ दो। तो अरबी में वो नुस्खा कैसा इस्तेमाल करना पूरा पढ़ा, सब हवलों के ऐसा बैठे हुए हैं, सुरता एक दूसरे के मेरे भी घूर रहे, क्या क्या तू भी तमाशा हो रहा। मैं बोला आप उर्दू में पढ़ो आप। तो उर्दू में वो तरीके इस्तेमाल उन्होंने पढ़ा, तो फौरन बोले अरे कहां मिलती है दवा, ये देखिए आप। यानी मालूम हुआ कि इसमें फायदा है। तो कुरान को आप ऐसी जबान में समझने की कोशिश कीजिए जो समझ में आए, अरबी को छोड़ना नहीं है। एक स्टेज ऐसा आना तर्जुमों की मोहताजी ना रहे, अल्लाह का फजल है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुजर चुका हूं मैं इस एक्सपीरियंस, मैं किसी इदारे में तालीम हासिल नहीं किया, मैं कोई उस्ताद के पास नहीं सीखा, पर्सनल अल्लाह ताला ने कोशिश करवाई। और अब अल्लाह का फजल है कि मैं समझ 90% ऑफ दी कुरान बगैर तर्जुमा पढ़े के जो है समझ में आ जाती। बाज़ अल्फाज हैं वो मैं समझता हूँ अरबों को भी होता है ऐसा, जैसा वो सऊदी अरेबिया के टीवी पे कुछ इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो इंटरव्यू के बाद जो है वो अरब साहब बोले कि साहब यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू एक्सप्लेन सम अरेबिक टर्म्स टू अरब्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बोला रीजन ये है कि तसव्वुर छोड़ दिया आप। अगर आप वो अल्फाज तो आपकी मादरी जबान है, आपको अरबी कुरान समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो तफक्कुर की दावत है कुरान में गौर करने की, उसको छोड़ दिया आप। तो गौर कब करेंगे आप? बात समझ में आई तो गौर करेंगे ना, बात समझ में नहीं आई तो गौर कैसा करेंगे? तो हमारे को डबल मेहनत करना पड़ेगा, अरबी में भी पढ़ना पड़ेगा, उर्दू या अंग्रेजी में भी पढ़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तर्जुमा पढ़ने का अजर आपको ना दे, दोनों का अजर मिलेगा इंशाल्लाह, दोनों का अजर मिलेगा। क्योंकि एक हदीस है कि जो कुरान रवानी में पढ़ता है उसको एक एक हर पे 10 नेकियां लिखी जाती है, जो अटक अटक के पढ़ता है उसको 20 नेकियां लिखी जाती है। वहां कोई कमी नहीं है अजर की, वहां स्ट्रगल करना है। जब समझ में आता क्या बात है माशाल्लाह, तो बोले ये तक हम ऐसी कौम के लिए जो गौर करते हैं। वल्लाहु यदू इलद्दार सलाम, और अल्लाह ताला तुमको दावत देता है सलामती के घर की। सलामती का घर जन्नत के अलावा और क्या होगा? यहाँ तो परेशानियां परेशानियां हैं, किसी ना किसी किस्म की परेशानी। अब दारुसलाम नाम रख लो आप, वो बात हो रहे, मगर सलामती का तो घर जन्नत ही है। वह यही भी मैं यशाओ इला सिरातुल मुस्तकीम, और जिसको वो चाहता है रास्ता दिखाता है सिरातुल मुस्तकीम का। अब ये सिरातुल मुस्तकीम क्या है? सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी सिरातुल मुस्तकीम इज द शॉर्टकट टू जन्नत। हर रास्ता कहीं ना कहीं जाता, सिरातुल मुस्तकीम कहां जाता? जन्नत को जाता। तो यही भी का मतलब क्या है? रास्ता दिखाता है। कोई नौजवान साहब आए थे एक वक्त, यही मैं समझाया तो आके पूछे साहब ये पहली दफा मालूम हुआ एहदिना सिरातल मुस्तकीम, बोले तो हम समझ रहे थे आप रास्ते पे चलाइए, रास्ता दिखाइए, चलना तो मेरा आपका काम है। तो यहां ये बात आ रही है कि वो तुमको जन्नत की तरफ दावत देता है, और जिसको वो चाहता है जन्नत के सीधे रास्ते पे शॉर्टकट पे जो है चला देता है। शॉर्टकट क्या है? कुरान और सुन्नत, शॉर्टेस्ट कट है कुरान और सुन्नत। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको उनके लिए भलाई है और ज्यादा। एक जगह 10 गुना आया, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं 700 गुना आया, एक जगह बगैर हिसाब आया। देखिए देन है अल्लाह ताला, क्या कमी है साहब, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम हमको जितनी जरूरत ही होता है दे दे रहे, बिगड़ जाएंगे हम लोग। देखिए बाज लोग जो है वो कुछ अशार भी है याद नहीं है मुझे, उसका मफहूम यही है कि आप गरीब रखे बोल के नेक हैं, हमको देखे देखो हम गुल खिलाते सो। तो यहां ये नहीं है कि अल्लाह ताला के पास नहीं है। तो जो है जो अच्छा अच्छा ही करते हैं उनके लिए अच्छा ही है और ज्यादा। ला यरकू वजूहुम खतरू वला जिल्ला, और उनके चेहरे पर न सियाही चाहेगी न जिल्लत छाएगी। क़यामत के दिन जो है उनके चेहरे पर न सियाही न डार्कनेस होगा न जिल्लत होगी। उलाइका असाबुल जन्नती हुम फीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो जन्नत में रहेंगे और जो जन्नत में जो जन्नत के वाले हैं और वो वहां रहेंगे। ये देखिए खालिदून रहेंगे, खालिदूना फीही अबदा, हमेशा रहेंगे। या फिर उर्दू शायरी में जो है खुल जन्नत बोल दिए, हमेशा रहना, दोजख में भी बात आ रही हो खालिदून, खालिदून रहना, अबदा हमेशा रहना, तो जन्नत में रहेंगे। अब हम अपनी तरफ से हमेशा क्यों ऐड करें, क्योंकि अबदा कई जगह पे आया है। वल्लज़ीना कसबू सैयात थी जज़ाउ सैयतिन बिमिस्लिहा, और वो लोग जो बुराई कमाते हैं और उनके लिए उसी के बराबर बुराई है, ज्यादा नहीं है उतने ही। एक नेकी के 10 नेकियां 700 नेकियां, एक बुराई की एक ही बुराई है, क्या रहमत है अल्लाह ताला की। अब यहां देखिए एक लफ्ज पे गौर करिए, वल्लज़ीना कसबू, वो लोग जो कमाते हैं बुराई, कमाते कैसा? मेहनत करके इंटेंशन से कमाते। भाई मैं 35-37 साल दफ्तर को गया इंटेंशन से गया, तनख्वाह मिलती बल्कि गया, चुप ऐसी तफरी को नहीं गया। आप दुकान खोलते बिजनेस करते जो भी काम करते तो आप इंटेंशन से कोई मकसद से करते। तो बुराई कमाने का मतलब है कि अपनी नीयत से जो गुनाह को कमाते हैं। घर पे बैठ के फोन आ कर रहे हैं, क्या है कल क्या कर रहे हैं, संडे है आ जाओ फलानी जगह, बोले हाँ हाँ ड्रिंक्स का भी इंतजाम हो गया, सब हो गया, प्लानिंग पूरा। پتوں کا انتظام ہو گیا, اس کا انتظام ہو گیا, اس کا پورا پلان کر کے آ رہے ہیں. اتفاق سے گناہ تو بہت کم ہوتے ہوں گے, اتفاق سے گناہ بہت کم ہوتے, گناہ کماتا ہے تو یہ قرآن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یا ایک لفظ جو ہے مس اپروپریٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کماتے ہیں ان کو بدلہ اتنا ہی ہوتا جتنی برائی ہوتی ہے. وہ ترخہم ذلہ, اور ان کے چہرے پہ ذلت طاری ہوگی. یہ ذلت اپوزٹ ہے عزت کی, کیونکہ یہ گناہگار زندگی میں اپنے آپ کو بڑی عزت والے سمجھتے تھے. بھئی کل تک آپ کے ساتھ جو بیٹھ کے پیتا کھاتا تھا اگر مسجد میں آ گیا تو انہیں بھی ڈرتا کہ ساتھ والے دیکھ لیے تو کیسا. بھی اب وہ کوئی جاتے جاتے بولے او ہو آپ مسجد میں, نہیں نہیں میں وہ پیشاب کو جا رہا تھا. وہ یہاں پیش امام صاحب تھے عبد الرزاق صاحب, اللہ مغفرت کرے, بولتے تھے کیا بولنا صاحب, کیا بولنا, بولے مسجد کو پیشاب کے واسطے آتے, بولے طہارت خانوں کو آتے, بولے نماز کو نہیں آتی, ایسی قوم ہے ہماری, بولے کیا بولنا, کس کس کو کیا کیا بولیں گے آپ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نیکی پہ جو ہے اتنا نواز رہے ہیں, برائی کا ہوتا, اور یہ جو اکڑتے تھے گناہ پہ اکڑتے تھے ان کو جو ہے ذلیل کیا جائے گا, انسلٹنگ رہے گا. ما لہم من اللہ من عاصم, اب یہاں اس کے دو ترجمے کا کیے گئے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. من کا ترجمہ سے طرف سے کیا گیا, اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بہرحال مختصر یہ کہ قیامت کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے. کانما اخشیت وجوہہم ختم من اللیل مظلمہ, یعنی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کے اندھیروں کے ٹکڑے ان کے اوپر جو ہے ڈال دیے گئے ہیں, بلیک ہو جائیں گے, ہو سکتا جل کے ہو جائیں گے, جل کے جو ہے کالے ہو جائیں گے, اور دوسرے چہرے جو ہے وہ نورانی ہوں گے جنتی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور یہ جو ہے دوزخ والے ہیں اور وہ وہاں رہیں گے. اب یہاں دیکھیں چہروں کی جو بات آئی ہے, تھوڑا سا یہ قرآن ہے, یہ ایک ایک لفظ کی مصلحت سمجھ, اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دے بات کو کھول دے تو سمجھ میں آتی. چہرہ, فیس از دا انڈیکس آف دی مائنڈ, چہرہ بڑا اہم ہے. آپ کسی کو نہیں بولتے, آپ کے پاؤں دیکھ کے پہچان لیا میں, آپ کی پیٹ دیکھ کے پہچان لیا, وہ سورت دیکھے تو پہچانیں گے نا, سورت پہچان کی چیز ہے. یہی سورت تماشے کری ہے چو طرف, یہ سورت ایکسپریشن بھی ہوتا, یہ سورت پہ غم کا ایکسپریشن بھی آتا, خوشی کا ایکسپریشن بھی آتا, شرم کا ایکسپریشن بھی آتا, خوف کا ایکسپریشن بھی آتا, غضب کا بھی ایکسپریشن آتا, غصے کا ایکسپریشن آتا. کتنے مسلز ہیں بس خالی, مگر آپ ایک عجیب قسم کی نورانی بھی ہوتا ہے, اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ خیر برس رہا, بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھو تو معلوم ہوتا اللہ بس میں پورا رکھے. تو یہ چہرے جو تم بنائے تھے دنیا میں, یہ چہرے جو اکڑتے تھے جس سے تم فخر سے, فخر بھی معلوم ہوتا ہے چہروں سے, ان کو جو ہے کالا کیا جائے گا, جلایا جائے گا, کالا کیا جائے گا. یوما و یوما نحشرہم جمیعا, اور جس دن ان تمام کو ہم جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم, اور جو لوگ شرک کرتے تھے ہم ان سے کہیں گے کہ تم اور جس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں وہ ٹھہر جاؤ. مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینہم, اور پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. جو شرک کرتے تھے وہ الگ رک جائیں گے, اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جن لوگوں کو ملاتے تھے وہ الگ رک جائیں گے, پھر ان کو جدائی ڈال دے گی. اور وہ خالا شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, اور جو اللہ تعالیٰ کا جو شریک بناتے تھے جن لوگوں کو, جن چیزوں کو, وہ علل اعلان بول دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کنا ان عبادتکم لغافلین, کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اور تمہارے میں گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری غلامی کر رہے. سوچ کے دیکھیے, اس میں جاندار بھی آ گئے. اب شرک کے جو آئٹمس قرآن میں آ گئے اس میں سے بعض یہ ہے کہ بعض جہاڑوں, جھاڑوں, پہاڑوں, چاند, سورج, ستارے, ملائک, انسان, بت, یہ تمام چیزوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا قائم مقام یا اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا تم ہماری غلامی کرتے تھے. کیا تم ایسوں کو سناؤ گے جو خبر میں ہیں؟ کیا تم مردوں کو سنا سکتے ہو؟ یہ بات سمجھیے, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ سے ہٹ کے تم جس کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے واقف ہی نہیں ہے, اور وہ خود اللہ تعالیٰ کو گواہی میں پیش کر رہے ہیں. غضب تو یہ ہو رہا ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ کو گواہی میں پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم ان کے شرک سے, ہم ان کی عبادت سے بالکل غافل تھے, ہم کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھے, حدیث نہیں پڑھے. اگر قرآن اور حدیث پڑھتے تو پھر اس سے ہٹتے نہیں تھے. اور یہ ایک ہی سلوشن ہے ہمارے پاس, ایک ہی سلوشن ہے ہمارے پاس کہ قرآن اور حدیث پہ واقف, قرآن اور سنت پہ واپس آ جاؤ. دیکھو آپ کامیابی کس طریقے سے دوڑے گی آپ کے پاس. اور بھائی ایسے قوم کرنا پڑے گا, ایسے قوم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو پاپولرائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا. بولا میں آپ سے ایک وقت جو 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا, وہ ٹریڈ ٹاورز گرے تھے, تو ایک صاحب آ کے میرے سے بولے, مسلمان صاحب, بولے انکل ون ہندو فرینڈ آف مائن واز آسکنگ فار دا قرآن, آئی گیو یور ٹرانسلیشن ٹو ہم. بولے بولا بائی دا وے ڈیڈ یو ریڈ اٹ؟ نو آئی ڈنٹ ریڈ اٹ. وہ بولے کیا ہے بھائی اسلام میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن دو. بولے تو لے کے جا کے ٹرانسلیشن دے دیا ہمیں. آپ پڑھے ہو کیا؟ نہیں میں نہیں پڑھا. وہ یہ ہمارا اسلام ہے. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بیکاز آئی ایم اے مسلم, ناٹ بیکاز اٹ از بیسٹ. انا ہے وہ بھی انا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے. کل آپ نہ اللہ کا نہ کرے بھپڑ جائیں تو آپ جدھر جائیں گے بولیں گے میاں یہ کمیونزم از بہترین ہے. بولے اس طریقے کی بات کریں گے آپ. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ ڈینائی کریں گے. ہنا لکھا تبلو کل نفس ما اسلفت, وہ اس مقام پہ یعنی قیامت کے دن, یعنی ہر شخص ہر نفس جو کچھ وہ آگے بھیجا ہے اس کو جانچ لے گا, ایگزامن کر لے گا. دیکھیں بھائی آپ کا عمل نامہ ہے, دیکھ لیجئے برابر ہے یا ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز خریدے بھائی, کمپیوٹر خریدنے گئے ہو, کئی پارٹس آئے, وہ بتا دیا دیکھیے صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تمام چیزیں دیکھ لیجئے, اس کی پوری بل بنا دی ہے ہمارے ساتھ. تو عمل نامے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے, دیکھ لیجیے آپ. تو پورا ہر نفس جو ہے جانچ لے گا جو آگے بھیجا ہے. وہ ردو الی اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی پلٹائے جائیں گے. مولا ہم الحق, جو ان کا حقیقت میں مولا ہے, حقیقت میں مالک ہے, حقیقت میں دوست ہے. ولی کے واؤ لام یہ کے مادے میں کئی باتیں آتے ہیں اور وہ اپوزٹ بھی آتے ہیں. تولا پلٹ جانا, ولی دوست, گارڈین. حقیقت میں جو گارڈین ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ ہے. وزل عنہم ما کانوا یفترون, اور یہ جو جھوٹ باندھتے تھے, یہ شرک وغیرہ کے جو کہانیاں قصے بناتے تھے, وہ تمام ان سے گم ہو جائیں گے. کیا کریں گے اس دن, کیا کریں گے آپ؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. جیسا میری ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے, کوئی صاحب کہیں میرے دوستوں میں سے کوئی صاحب سکندر آباد میں کہیں گئے تھے, بولتے جمعے کے دن کسی صاحب کے پاس گئے اور وہ دین کی باتیں ہو رہی, وہ آزاں ہوئی, دیکھے یہ نہیں اٹھے, گئے نماز جمعے کی پڑھ کے آئے, پھر وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کہ بھائی آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے؟ تو بولے میاں ہمارا تو ہر سانس نماز ہے, معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمازیں فرض ہوئی, معاف نہیں ہوئی. آپ کا کیا مقام ہے کہ ہر سانس نماز ہے؟ اب سوچ کے دیکھیے, ہم دین کو اس طریقے سے بگاڑ لیے ہیں, اب بگاڑنے والوں کے پاس جا کے اور بگاڑ رہے ہیں. یہ کتاب پہ آئیے, قرآن پہ آئیے, احادیث پہ آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آئیے. قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس راستے کو چھوڑیں گے تو جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے, انشاءاللہ ناکام ہوں گے اس راستے کو اگر چھوڑیں. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, وہ گناہگاروں کو بھی معاف کرنا اگر چاہے تو کر دے, ہم تو گناہگار ہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے توفیق دے کے قرآن اور سنت پہ عمل کرے. آج کی احادیث میں وہی دنیا اور آخرت کی بات کچھ آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی یہاں تک کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا, اور یہ بریکٹ میں ہے کہ اور پھر بھی نیک نہ بن سکا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں رہے گا, یعنی کوئی عذر نہیں رہے گا. 60 बरस की जिंदगी दी फिर भी कुरान और हदीस पे नहीं आया, वही भटकते रहा अपने कामों में, बोले वो जवानी के किस्से सुना रहे, बच्चों को बिठा के ऐसा है वो है, दीन पे नहीं आए, कुरान हदीस पे नहीं आए, तो उसके क़ियामत में कोई उज़र उनके उसके लिए पेश एक्सेप्ट नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब करके फरमाया कि अल्लाह से पूरी तरह शर्म करो, शर्माओ। हमने कहा क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह से शर्माते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से शर्माने का इतना ही मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह से पूरी तरह शर्माओ। शर्माने का मतलब यह है कि तुम अपने सर और सर में आने वाले ख्यालात की निगरानी करते रहो। खराब ख्यालात कुरान और हदीस के खिलाफ जिसकी ममानियत है, वो ख्यालात सर में ना आने दो, और पेट के अंदर जाने वाली गिजा की देखभाल करते रहे। चिकन 65 वहां 75 बन के आएंगी खियामत में। वो बेरर को बुलाया, बीमिया हलाल है, हसा हलाल है, बोले चलो फतवा दे दिया उन्हें। अब वो कैसा है क्या है, भाई जहां शक है वहां खाओ ही मत ना, घर में बनाओ, अगर बना नहीं है तो शक की जगह क्यों करते हो। तो भैया ख्याल रखो कि तुम क्या खा रहे हो, हराम चीज तो नहीं जा रही है पेट में, और मौत के नतीजे में सड़ गल जाने और फना हो जाने को याद रखे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स आखिरत का तालिब होता है वो दुनिया की जीनत और आराइश को तर्क कर देता है, और हर मौके पर आखिरत को दुनिया पर तरजीह देता है। कोई भी चांस आए तो ये सोचता है कि भाई इसमें दुनिया में भलाई है या आखिरत में भलाई है, ये सोचता है, और आखिरत में जिसमें भलाई है उसको तरजीह देता है। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए। बस जो शख्स ये सब करता है वही दर हकीकत अल्लाह से ठीक ठीक शर्माता है। ये तमाम ऊपर जो बयान किए गए हैं कि अपने सर को और पेट को जो है हराम चीजों से बचाए रखना, और दुनिया को आखिरत को दुनिया पे तरजीह देना, ये तमाम चीजें जो करता है बस वही दर हकीकत अल्लाह ताला से ठीक शर्माता है। ये आखिरी हदीस है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहायत मुख्तसर और जामे नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो उस शख्स की सी नमाज पढ़ो जो दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, और अपनी जबान से ऐसी बात ना निकालो कि अगर क़ियामत में इसका हिसाब हो तो तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए न रह जाए, और लोगों के पास जो कुछ माल और असबाब है इससे तुम बिल्कुल बेनियाज रहो। तीन चीजें बताई हैं। पहली चीज ये बताई है कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे आखिरी नमाज है। ये बहुत बड़ा मर्तबा है, सब समझना है। मौत से किसको डर है, अब भी जाते हैं, बहुत दिन जीते उन्होंने, उनको देखो 85 चल रहा अभी, वॉक करते सब। तो बुड्ढों को डर नहीं है मौत का, तो जवान लोगों को क्या डर होगा, मौत तो कभी भी आ सकती है। कार्डियाई करे, हंसते हंसते मर गए लोग, रोते रोते मर गए, बैठे बैठे मर गए, चलते चलते मर गए। तो पहली चीज ये बताई जा रही है कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो जैसा आखिरी नमाज है, इसके बाद में चांस मिलने वाला नहीं है, इसके बाद फिर चांस मिलने वाला नहीं है। तो वो नमाज में क्या कैफियत होगी कि बोले भाई पुल सिराट पे हैं तो सामने जन्नत है पीछे दोजख है, कुछ अजीब सी कैफियत बनी हुई है, नहीं मालूम, अल्लाह ताला एक्सेप्ट करते नहीं मालूम, दिल को टटोल रहे हैं कि अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए है। तो ऐसी नमाज पढ़ो जो आखिरी नमाज की तरह हो कि इसके बाद जिंदगी रहती या नहीं रहती नहीं मालूम। और फिर जबान से ऐसी बात ना निकालो कि कहीं क़ियामत के दिन उसका हिसाब ना देने पड़े। ऐसी बातें तो रोज निकालते रहते हैं, देख लूंगा, क्या समझ रहे हैं, क्या देख लेंगे आप, ये लड़े झगड़े रोज के कई ऐसी बातें रहती है, आप मेरे से घिस ले रहे हैं, आपको मालूम मैं कौन हूं। चलिए अब वहां जाके जवाब देना पड़ेगा कौन है, ये आना की कैफियत थी। तो कई ऐसी बातें रहती है, ऐसी बातें जबान से मत, बाज़ वक़्त कुरान और हदीस के खिलाफ बातें निकल जाती, नऊज़ु बिल्लाह, बहस में बाज़ वक़्त बोल रहे हैं हम हदीस है, बोले होंगी हजरत, नऊज़ु बिल्लाह। देखिए हदीस जब बोले खामोश हो जाइए, आपको अगर अपील भी नहीं कर रही है तो खामोश हो जाइए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही, पहले तो आप उर्दू में ट्रांसलेशन करें, वो ट्रांसलेशन हो सकता है गलत ट्रांसलेशन हो। मैं कई ऐसे हदीस का ट्रांसलेशन पढ़ूं जो अरबी कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, एक हदीस है कुरान के ताल्लुक से, जो कुरान अच्छी आवाज में ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मेरे तो छिक्के छुड़ गए पढ़ते, मेरा मैं अच्छी आवाज से पढ़ ही नहीं सकता कुरान, जरा अरबी देखो, अरबी में था मोगनी, غنا سے ہے. غنا دولت مند انڈیپینڈنٹ کو بولتے ہیں, مغنی ہمارے پاس گانے والے کو بولتے ہیں. وہ اردو ذہن پہ تھی شاید, تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ جو اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے, جو پڑھ سکتے ہیں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. یہاں حدیث کا ترجمہ ہو گیا, میں کرا تو یہ کروں گا, جس کو قرآن مالا مال نہ کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس کو قرآن انڈیپینڈنٹ نہ بنا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنا بہترین ترجمہ اس کو جو ہے ایسا ہو. مگر پھر بھی جب حدیث بولے تو خاموش ہو جانا چاہیے, ایسی بات مت نکالو کہ قیامت کے دن پوچھ ہو جائے. اور پھر آخری یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے اسے بے نیاز رہو, اللہ آپ کو اور نوازے گا, ہمارے کیا کرنے کا. لوگوں کے مال پہ نظر مت رکھو. دیکھیں اپنے سے اونچے لوگوں پہ مال کس کے پاس رہتا, اپنے سے زیادہ اونچے لوگوں کے پاس رہتا. جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے شکر ادا نہیں کریں گے آپ, پھر وہ ناشکری کریں گے, وہ خود ایک گناہ ہے. تو لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, قرآن میں بھی بات آئی ہے کہ مردوں کو مردوں کی کمائی ہے, عورتوں کو عورتوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو, لوگوں کے پاس کیا ہے ان کے طرف مت دو. میرے لیے جو بہتر ہے وہ دے دیجئے, ہو سکتا ہے میرے لیے وہ بہتر نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.